ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں میرا ایک تجربہ ہے جس میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ معتدل یعنی بیلنسڈ اور مؤدبانہ تعریف لوگوں پر اثر کرتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی عابد و زاہد اور ظاہری چیزوں سے دور بھاگتا ہو، لیکن جب اس کی تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں اہل تقوی، علماء اور متدین لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، جب ان کا شکریہ ادا کیا جاتا یا مداح کی جاتی تو وہ نرم پڑ جاتے، چہرے پر خوشی چھلکتی اور پیشانی چمکتی۔ مطلب یہ ہے کہ نرم کلمہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ ذرا سا اپنے اوپر لیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ بہت سویٹ ہے، کیسا لگتا ہے؟ اگر میں آپ کو ہی کہہ دوں، ابھی میں آپ کو دیکھ تو نہیں پا رہی، لیکن اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ تو بہت معصوم لگتی ہیں، آپ کو اس جملے کے ساتھ کیا لگے گا؟ یقین کرے دور بیٹھے ہوئے بھی ایک بونڈ بنے لگے گا۔ تو جب ہم کسی کو نرم لفظ بولتے ہیں نا، تو اس کے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات تو کرو۔ تو نرمی اثر رکھتی ہے۔ اس کے برعکس کسی کو کہیے تم بہت چلاک ہو، بڑی ہوشیار ہو، تو غصہ آتا ہے نا۔ بس تو آپ کیوں دوسروں کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑکائیں؟ اللہ کے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کا قرار واقعی مقام دو، یعنی جو وہ ڈیزرو کرتے ہو نا، ضرور ان کو مقام دو۔ انزل الناس منازلہم، آپ کی ایک بہت پیاری روایت ہے، یمامہ کے حاکم سمامہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ جملے بولے تھے، جو اپنی جگہ بہت بڑا ایک حکمران تھا، تو فرمائے کہ آپ اس کو عزت دیجئے۔ اور قرآن پاک میں فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اور ایک بڑی پیاری کتاب ہے کہ آپ دوست کیسے بنائیں، اس کے مؤلف کی رائے ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے عوامل میں یہ ہے کہ ان کی مد و ثنا زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ میری یہ رائے تو نہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ تعریف ہو۔ یعنی جب آپ بہت زیادہ بھی تعریف کر دیتے ہیں نا، ایک تو کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے کہ جھوٹی نہ ہو، مبالغہ نہ ہو۔ چلے آپ کہتے ہیں نہیں سچی بات ہے، سچی تعریف ہے، واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان ہوگا، پھر آپ اگلے کی جب تک اس سے زیادہ تعریف نہ کریں وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ مثال ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے، اس نے کھانا بنایا، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اچھا بس، آپ کہتے ہیں کہ کھانا اچھا تھا، خوش نہیں ہوگا؟ آپ کہہ دیں اچھا تھا نہیں، آپ کہتے ہیں آپ جیسا تو کوئی پکا ہی نہیں سکتا، پھر خوش ہوں گے۔ تو سنتے سنتے تعریف سے بھی لوگوں کے کان اتنے متاثر ہوتے ہیں، واہ مزہ آ گیا، ہر لقمے پہ تعریف کریں، کیا بات ہے آپ کے ہاتھ میں، بھائی اللہ نے تو آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہی بڑا رکھا، یہ کرنا پڑتا ہے، تو کیجئے، اچھی بات ہے۔ اور یہ ایک بہت مستقل ٹاپک ہے تربیت کا، بچوں کی تربیت ہو یا ساتھیوں کی۔ میں نے تو یہ سیکھا سیرت میں، اللہ کے نبی نے منہ بھر بھر کے تعریفیں نہیں کی، رغبت دلائی، دعائیں دیں، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دی، لیکن کبھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مسجد میں یا مدینہ میں مسجد نبوی میں یا حرم میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے کلابے نہیں کہنے کہ ان کو اتنا اوپر چڑھا دیا تھا۔ کچھ لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے نا، تعریف ہی تعریف اپنے بچوں کی، میرے بچے ایسے، میرے پوتے ایسے، میری پوتیاں ایسی، میری نواسی، میری، ٹھیک ہے ہوں گی، لیکن ان کو زیادہ اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ ان کی ہیں۔ دوسرے بور ہو جاتے ہیں، بلیف میں دوسرے بور ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھو نا، انہوں نے شروع ہو جانا ہے اپنے میاں کی تعریف، میاں میرے ایسے، میرے یہ لاتے، یہ ہوتے۔ آپ کہتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ حسد جی، کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو آپ کیوں دوسروں کو حسد کرنے کا موقع دیں؟ اپنی نعمتوں کا کچھ زیادہ اظہار اور تذکرہ کر کے تو مناسب رہیے۔ اب یہ بھی نہیں کہ منہ چڑھا کے بیٹھ جائیں، تنک مزاجی کے ساتھ ساتھیوں سے بات کریں، یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہوتا۔ اچھے طریقے سے بات کیجئے، اچھا معاملہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا کہ دوسروں کے لیے بہت ہی خوشی کا اور خیر کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے کہ آپ جب تک دل سے بات نہیں کریں گے نا، اگلے کو خوشی نہیں ہوگی۔ ایک سیکنڈ میں بتا لگ، بعض لوگ دو لفظ لکھتے ہیں بلکہ ایک لفظ، अगले का दिल सरशार होता है कि इन्होंने मेरे लिए ये लफ्ज़ बोला है या लिखा है। और कुछ लोग आपको उठा कर कहना चाहिए आसमान पे बिठा दें, जुमलों पे जुमले, आपका दिल खुश नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है, यानी बेमकदार, ना ज़्यादा तमल्लुक ना जफा। तमल्लुक समझते हैं और जफा समझते हैं? आप कहते कुछ भी नहीं समझते, तो दोनों को छोड़ दीजिए। मतलब ये है कि अल्लाह ताला बंदे को बीच में देखना चाहते हैं, ना इतने कड़वे बनिए कि कोई थूक दे और ना इतने मीठे बनिए कोई निगल ही जाए, बल्कि खुश अखलाकी, बुलंदी और सखावत। हम और आप ये कर सकते हैं कि लोगों पर तेवरी चढ़ाएं, लेकिन इस तरह पाने की बजाय हम इन्हें खो देंगे। जी ये भी बड़ी बात है। अब ये ना कहें कि फिर तारीफ तो करनी नहीं, हर वक्त नक चढ़े, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। एक वक्त अगर ज़रा तनकीद की तो दूसरी दफ़ा दोगुना बढ़कर तारीफ कीजिए। यही चीज़ फिर उनको यकीन दिलाएगी कि ये झूठी तारीफ नहीं करते, ये हमसे झूठी मोहब्बतों के दावे नहीं करते। और इसी तरह से सवाल, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान इन्हें दूसरे लोग मिल जाएंगे जो इनसे तवाज़ो से पेश आएंगे, मुस्कुराएंगे और इनके लिए बाजू फैला देंगे। अल्लाह ने तो खुद नबी को कहा कि आपके जो ईमान वाले पैरोकार हैं इनके लिए अपने बाजू झुका दीजिए। जी बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं टीम नहीं बनती, लोग नहीं मिलते, हाय ये लोग लोग। पीछे भी हमने इस पे बात की थी ना कि एक शख्स कहता है मुझे तो लगता है मेरे पे जादू कर दिए किसी ने, कोई काम नहीं मेरा चलता। और उस शख्स ने जिनको ये बात कही गई करीब रहकर उनके साथियों को जब देखा, हर बंदा उस बंदे की बदखुलकी की बात करता है, कंजूसी की बात करता है, स्टिंजीनेस। उसने कहा तुम्हारे ऊपर काला जादू नहीं हुआ, तुम खुद ही काला जादू हो। तुम्हारे जैसे कंजूस बंदे के साथ कौन रहेगा और तुम्हारे जैसे बदतमीज के साथ कौन जिएगा? तो लिखिए अपने लिए, ये हमारी खुश नसीबी है कि लोगों का प्यार पा लें, क्योंकि वो तारीफ, रियायत, मोहब्बत और मेहरबानी के मुस्तहिक हैं। वो जमीन में अल्लाह के गवाह हैं, क्योंकि वकूलुल लिन्नासी हुस्ना। अल-बकरा 83 में क्या फरमाया, लोगों से भली बात कहो। जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को जाना जो लोगों से मिलने जुलने का फन अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए लोगों के दिल इनकी तरफ इतनी तेजी और जल्दी से माइल हो जाते हैं जैसे ठंडी और साफ हवा के साथ नरम पत्ते उड़ते हैं। जहां वो जाएं और उतरें, निगाहें इनका पीछा करती हैं। इनके चेहरे लोगों के लिए खिले होते हैं, दिल साफ, जुबानें पाक। वो कितने खुश नसीब होते हैं, ये वो कितने खुश होते हैं, और इनको पाकर लोग कितने खुश रहते हैं। अल्लाह हमें ऐसा करते, दुआ करें, बहुत बड़ी दौलत है ये। हर बंदा आपके लिए बिछने को तैयार, हर बंदा आपसे मिलने को तैयार, ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है अगर अल्लाह ताला किसी को नसीब कर दे। और अपने लिए गोल बनाइए, लोगों से राय लेनी है मैंने। आप देखिए बस लोग मुरव्वतन नहीं बोलते, लेकिन उनको हमसे बहुत सारे गिले होते हैं। उनको पूरी इजाज़त दीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनको पूछिए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा क्या अखलाक है, मैं अपने अंदर क्या बेहतरी लाऊं। पूछने में कोई हर्ज नहीं, और अगर आपको बुरा ना लगे तो अपने बच्चों से भी पूछिए। बच्चे तो बेचारे शायद बोल ही दे, मियाँ से भी पूछिए, सास से भी पूछिए, घर के नौकरों से भी पूछिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। दिलों को मोल लीजिए और दिल में लोगों के लिए प्यार भर दें। वो कहते हैं ना, मट्टी में हाथ डालेंगे ना सोना बनेगी। टीमों की टीमें तैयार हो जाती हैं ऐसे बंदे के साथ। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, लोगों को हिफ्स होता है, उनकी तजवीद बड़ी अच्छी, लेकिन वो तन्हा रहते हैं या उतने कामयाब नहीं होते जितना वाकई उनको होना चाहिए अपनी खूबियों की वजह से। वजह क्या है? टीम बिल्डिंग नहीं आती। जो बंदा बंदे को नहीं चला सकता ना, उसको कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए। जो जिस बंदे को नहीं समझ सका ना, उसको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हम मशीनें चला लेते, गैजेट खोल लेते, मशीनरीज चला लेते, हम बंदों को चलाना नहीं जानते। इसको क्या तरीका अच्छा लगेगा, किसकी तारीफ करनी, किसकी नहीं करनी, किसकी मिन्नतें करनी, किसको लाड से देखना, किसको जरा एक उचटती निगाह से देखना, ये नहीं आता हमें, इसीलिए हम कामयाब नहीं होते। अल्लाह की तौफीक के बाद बंदे के मुकद्दर या मकदूर में है कि वो ज़मीन में कबूलियत पा ले, यानी बंदे का ये हक है कि दुनिया में उसको लोग कबूल करें, मकबूलियत पा ले वो। लेकिन ये कबूलियत कारून के ख़जाने, सुलेमान की बादशाहत, हारून रशीद की खिलाफत से नहीं खरीदी जा सकती। जी कुरान में है ना, वलो अनफक तमाफिल अर्दी जमीयन, ए नबी अगर आप ज़मीन भर की सारी दौलत भी खर्च कर देते ना, तो आपके साथी जो आपसे प्यार करते, आप ये प्यार नहीं पा सकते थे। और ये बात सच है, जहेज में सोना चांदी देकर तोल के भेज दें बच्ची को, नहीं मिलेगी मोहब्बत अगर अल्लाह ना दिलों में डाले और उसका अखलाक और किरदार अच्छा ना हो। बल्कि इसके लिए ज़रूरत किस बात की है, अल्लाह के लिए इखलास नीयत लिखिए। किन चीज़ों से आपको लोगों की मोहब्बत मिलेगी? नंबर एक, इखलास नीयत, फिर सिद्क सच बोलिए, फिर तीसरी चीज़ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में चूर हो जाइए और लोगों की सच्ची खैरख्वाही कीजिए और नफ्स अम्मारा की तहकीर और उसकी मलामत और सरजिंच कीजिए। ये अपने लिए जेम्स बना लें। ये चार छः चीज़ें आपके मेरे अंदर आ गई तो देखिएगा, घरों में नहीं दिलों में जिएंगे। लोगों का एक घर, आपका हर कोने में घर, जिसको दिल में लोग रख ले ना, फिर उसको घर में रखने से कोई नहीं चूकता, फिर उसको और ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। और अच्छी सिफात यानी सिफात हमीदा और खसाइल ले जमीला यानी मतलब गुड हैबिट्स, किरदार करेक्टर दुश्वारी से हासिल होते हैं क्योंकि वो बुलंदी की जानिब है, जबकि बुरे अखलाक और शरारत तबा आसानी से आ जाती है कि वो नीचे की तरफ जाती है और चढ़ाई मुश्किल है, जबकि नजूल आसान होता। कितनी खूबसूरत बातें, अल्लाह करे आपके दिल में ऐसे उतर रही हों जैसे इनको उतरने का हक है। यानी आप अच्छी आते अपनाएं बहुत मुश्किल है, पहाड़ी पर चढ़ने के बराबर है, और बुरे अखलाक चुगली ताना गीबत उसको लगा उसको बोल यानी गंवार बन जाना, गंवारपन बड़ा आसान है, जैसे पहाड़ से नीचे बंदा फिसलता ही जाए। शायर कहता है कि जो पस्त होगा जिल्लत इसके लिए आसान हो जाएगी, मैयत के किसी जख्म से उसे तकलीफ नहीं होती। जी यानी अंदर से मुर्दा हो जाता है ना बंदा, फिर उसको ये भी नहीं याद रहता और इसकी भी परवाह नहीं रहती कि लोग उसको अच्छा कह रहे हैं कि बुरा। ज़िंदगी का मज़ा और हकीकी लुत्फ वो है जो दूसरों को भी खुश कर दे, ये भी नोट कर लें, यानी सिर्फ खुद ही ना सारे मज़े ले जाएं, दूसरों को भी खुश कीजिए। वो इनकी सलाहियतों और कुदरतों का एतराफ़, इनकी उमंगों और आरज़ुओं की हौसला अफजाई है, इनकी मेहनतों पर पानी फेरना और किरदार की नफ़ी करना नहीं। लोगों की ज़िंदगी जिस चीज़ से ख़राब होती है यानी खन्नी और मुकद्दर हो जाती है, वो ये है कि आदमी बस अपने आप को देखे, बस वही ताबनाक सितारा, मेहराब आसमां, नाबगाए रोज़गार और नादिरुल असर है, इसके अलावा जो हैं वो कासिर हैं, इनमें कमियां पाई जाती हैं। कई लोगों से वाकिफ हूँ, ये कहते हैं कि वो खैर का काम करते हैं, इनकी सलाहियत और मेयार ठीक है, मैं समझता था कि वो अपने आप को सही तौर पर जानते होंगे, इसलिए अपने बारे में मुबालगा आरई और गलूफ से काम न लेंगे, लेकिन जब अमलन इनसे साबिका पड़ा तो पता चला कि वो तो ये समझते हैं कि इनकी कोशिशें लोगों के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा बुलंद हैं। एक साहिब तालिब इल्म है और मुब्तदईन के लिए छोटे छोटे किताबचे लिखते हैं, मैंने इनकी कोशिशों की तारीफ की कि क्या जामे से बाहर हो गए, यानी अपने ही कपड़ों से बाहर आ रहे हैं। अरे साहेब इतनी किताबें निकल गईं, लोग इन पर टूटे पड़ते हैं और सब तारीफ करते हैं वगैरह। यानी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, एक बच्चे को मैं जानती हूँ, अपने घरों का बच्चा, माशाल्लाह हाफिज है, बहुत प्यारा कुरान पढ़ता है, किसी तरह उसको यूट्यूब का पता चल गया होगा या वीडियो बनानी आ गई, मेरा 10-12 साल का बच्चा है, माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी भी दे और हमेशा से रखे। तो उसने एक YouTube चैनल बनाया और फिर उस पर 2 वीडियोस शेयर की और फिर मुझे भेजा, कहने लगा पुप्पो अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को मेरी ये वीडियोस भेज दें और उस पे 2 व्यू, 3 व्यूज, 10 उसके। लेकिन उस बच्चे को क्या लगता है कि मेरा चैनल दुनिया में सबसे कामयाब चैनल है। अल्लाह अकबर। और मैं सोचती हूँ कि जब हम छोटे थे ना तो हमारी खुशियाँ भी छोटी छोटी थी, और अब हम बड़े हो गए ना तो हम बड़ी से बड़ी बात पे भी सीधा ही नहीं होता हमारा मुंह। तो याद रखिए, जिंदगी के शुरू में बंदे को छोटी छोटी कामयाबियां बड़ी प्यारी लगती हैं। कुछ लोग हैं स्टूडेंट बने के, जब टीचर बनता है ना नया नया कोई, तो स्टूडेंट ही गिनता रहता है। मैं अक्सर सोचती हूँ ये पढ़ाता कैसे होगा। आज इतनों ने सुना है, आज इतने क्लिक्स आए हैं मेरे, आज ये हुआ, आज वो हुआ, वही तो आप पढ़ा कैसे रहे थे। ये शुरू में होता है, हर एक को होता है, शायद कभी हमें भी होता था। लोग ही गिनते रहना, आए ही नहीं फुला नहीं आए, अच्छा थोड़ा सा इंतजार ना कर लें कुछ लोगों का, अच्छा थोड़े से और लोग आ जाएं। और एक वक्त आता है आपके लिए जीरो है ये बात, आप कहते मुझे तौफीक मिल रही है यही बहुत है। तो ये लिखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि कोई अपनी ही किताबों की तारीफ कर रहा है, ये हुआ, लोग टूट पड़े, मेरी तो चीजें हाथों हाथ ली जा रही हैं, तो कहते हैं कि मुझे हैरत हुई कि इंसान अपनी तारीफ से किस कदर खुश होता है, और जो उसकी तारीफ ना करे, इसकी शान घटा दे, उसकी मेहनत का एतराफ ना करे, वो इसे सबसे ज्यादा नापसंदीदा होता है। एक और तालिब इल्म की एक कैसेट मैंने सुनी, ये साहेब बहुत मशहूर नहीं थे ना बिल्कुल गुमनाम, मैंने हौसला अफजाई की खातिर इनको फोन किया और तारीफ की। जैसे ही मैंने इनकी कैसेट की तारीफ की, बस शुरू हो गए। पहले तो आजिजी से बोले कि बस अल्लाह का करम है कि इनकी कैसेट आम हो रही है, तमाम मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है। फिर उन्होंने बताया कि इतने लोग लेक्चर में शरीक हुए वगैरह, जैसे इनकी कैसेट्स मशरिको मगरिब में फैल गई हों। यानी इंसान फितरी तौर पे अपनी तारीफ से खुश होता है, इसको आप जुटला नहीं सकते। अगर आप कहते नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो गलत कहते हैं, लेकिन बस ये याद रखिए कि इसी पे नजर ना लग जाए, मुबालगा ना हो, छूट ना हो, और इसी तरह फिर इस सारी तारीफ को ना अल्लाह के दीन की तरक्की में ढाल दें। चलो बहुत सारे सुनते हैं ना तो दीन फैल रहा है, दीन को फायदा होगा, फिर ये फिक्र लग जाती है कि मेरी तारीफ ही तो नहीं करके जा रहे, कुछ सीख भी रहे कि नहीं सीख रहे। यानी एक ऐसा वक्त आता है कि फिर आपका दिल करता है कि मेरी तारीफें करने की बजाय दीन को फायदा दो। फिर अगर खुशी भी होती है ना कि आज बहुत सारे लोगों ने सुना, तो सिर्फ इसलिए होती है कि इतने सारे लोग हिदायत की तरफ आ रहे हैं, इतने सारे लोग जहन्नुम से दूर हो रहे हैं। बस इससे ज्यादा जब आप खुद अपनी नजरों में इतने छोटे होते हैं ना, फिर आपको अपनी तारीफें भी चुभती हैं, बल्कि उलझन आती है और वहशत होती है अपनी तारीफ से कि मैं तो हूं ही कुछ नहीं, आप क्यों मुझे बड़ा बना रहे हैं। और इससे ये भी समझ में आता है कि नफ्स इंसानी अपनी कदरों कीमत में बहुत मुबालगा पसंद है, इसे अपनी तनकीद बहुत नापसंद है। एक वॉइस की मैंने तारीफ कर दी, इनकी तकरीर में मैं खुद शरीक न था, दूसरों ने बताया था। जैसे ही तारीफ की, उन्होंने बताया कि कितने लोग शरीक हुए और मुतासिर हुए और कितने रोए और कितनों ने इनके हाथ पर तौबा की। लिहाजा आप कभी भी किसी की शान न घटाएं ना उनकी तहकीर करें। और अल्लाह ने सूरह हुजरात में कहा कि मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है ये इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि ये इनसे बेहतर हों। आप लोगों की हिम्मत अफजाई करें, इन पर तवज्जो करें, इनके कामों से दिलचस्पी लें, तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। यही कुरान का भी तरीका है, पीछे 4 या 5 बातें गुजरी है ना, उधर इखलास नीयत वगैरह था, उसमें आपकी अपनी इसलाह थी, तो अल्लाह दिलों में मोहब्बतें डालता है, इधर आपका लोगों के साथ ताल्लुक है, आप लोगों पर तवज्जो दीजिए, उनसे बात करें। किसी बच्चे से मिले ना, सुनाए बेटा क्या हाल है, क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या सब्जेक्ट, अच्छा कैसा लगता है, कौन सा कॉलेज है, अच्छा आपका क्या, यकीन करें कि आपके उसके बीच में ना नजर आने वाला एक रिश्ता बन जाएगा, एक रेपो बनेगा, ऐसी डोरियां बन जाती हैं बीच में कि बच्चे भी बाद में कहेंगे फुला आंटी कितनी अच्छी थी। आप देखिए बहुत कम लोग होते हैं जिनको बच्चे भी अच्छा के बड़े भी अच्छा के, वो बच्चों में बच्चे बन जाते हैं, बड़ों में बड़े बन जाते हैं, बहुत पढ़े लिखों में हो तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, और मासियों में बैठे हों तो वो मासी ही बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा आर्ट है, इतना वर्सटाइल होना हर एक के हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह ही जिसके लिए चाहे। آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں سے محبت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان سے الگ نہ ہوں, اور جو آپ کے ساتھ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان پر صبر سے کام لیجئے. سورۃ الکہف آیت 28 ہے. اور عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی, کہ آپ نے تیوری چڑھا دی اور ذرا سی پشت پھیر لی اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک اندھا آ گیا, آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تزکیہ اختیار کر لے. تو اللہ کے نبی کے وہ ایکشن جو عبداللہ بن ام مکتوم نے خود نہ دیکھے, اللہ نے ان پر تنقید کر کے قرآن کی صورت بنا دیا. تو یہ تو پھر اللہ اپنے نبی کو سکھا رہا ہے, تو ہمیں بھی اپنے لیے یہی سیکھنا ہے. سیرت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جبلہ بن الاہیم, اس بات پر مرتد ہو گیا کہ اس کے ساتھ حسب مرتبہ معاملہ نہیں کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پوری عزت نہیں دیتے, ہمیں پورا نہیں مانتے, ہمارا وہ ڈیو حق نہیں دیتے, وہ رسپیکٹ نہیں, ہماری اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے, ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی دوسروں کو دینی چاہیے. تو یاد رکھیے یہ باتیں صرف قرآن پڑھنے سے پہلے کی ہوتی ہیں. اور یہ شخص تو بیچارہ مرتدی ہو گیا. جس لوک کا مستحق وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اس کو وہ نہیں ملا. طٰہٰ یاسین نے الایام میں لکھا کہ داخلے کے وقت اصغر کا ایک شخص, یعنی ایک شیخ ہیں جامعۃ الازہر, بہت بڑی یونیورسٹی ہے مصر میں قاہرہ میں, تو کہتے کہ ایک شخص امتحان لینے کے لیے آیا اور اس سے کہا او اندھے سورۃ کہف پڑھ. یہ تلخ بات طٰہٰ حسین کے دل میں اتر گئی, ہمیشہ اسے کچوکے لگاتی رہی, اس لیے وہ نہ صرف الازہر سے نکل گیا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کا ناقد بن گیا, یعنی تنقید کرنے لگا, اپوننٹ ہو گیا, اس سے نفرت کرتا رہا. ظاہر ہے کوئی بھی اپنے آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا, کوئی بھی اپنے آپ کو سستا اور حقیر نہیں جانتا, ہر آدمی اپنے آپ کو چاہتا ہے, ہر آدمی اپنی قدر جانتا ہے, پھر کون چاہے گا کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جائے. اللہ ہی بہت بڑی باتیں ہیں. اور اگر آپ پبلک سپیکر ہیں, اگر اللہ نے آپ کو استاد بنا ہی دیا اور آپ اگر کہیں بڑے بنا ہی دیے گئے, تو خدا کے لیے لوگوں کو اوئے توئے نہ کریں. بچے کو بھی آپ کہیے آپ جناب, ماسی کو, ڈرائیور کو, جی جی بابا, جی اماں, جی ماسی, جی خالہ, کیا چاہے گا آپ کا, آپ کی برے بنتے ہیں. اور یہ جو باتیں کڑوی سینے کو اندر سے بڑھے, او ادھر آ, دروازہ کھول, دیر سے کیوں آیا, لا حول ولا قوت الا بالله, شاید یہ تکلیفیں ہی بن جائیں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے کفارے, مشکل تکلیفوں میں ڈال کر اللہ پورے کرائے. کہ یہ زبان سے لوگوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا, اور اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے. کسی بھی مجلس میں آپ دیکھیں گے کہ بولنے والا واحد متکلم بہت استعمال کرتا, میں نے کہا, میں نکلا, میں نے ملاقات کی, مجھ سے کہا گیا, وغیرہ وغیرہ. آپ نوٹ کیجئے گا آج کے بعد آپ کو بہت کچھ کھل کر سمجھ آنے لگے گا, یہ انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو یہ جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں ان کو آپ بے پرواہی میں توڑنے کی کوشش کریں گے. یعنی ایسا نہیں بولنا چاہیے, میں تو بکری کو اچھا لگتا ہے, اور یہ اندر سے سر میں بندے کی خود پسندی ہوتی ہے. میرے اسٹوڈنٹ, میں نے کہا, میری ٹیم, میری کلاس, میرا چینل, میری کتابیں, کیا بات ہے, آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, کبھی میں نہ بولیے. ہم اپنے ناموں کو اتنا معروف کر دیتے ہیں بعض دفعہ. آپ دیکھیے کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتی, لیکن یہ ٹرینڈ پچھلے 8-10 سال سے عام ہوا, لوگوں کے نام پر چینلز بن گئے, ویب سائٹس بھی ہیں, ڈگریاں بھی, اور ان کے ناموں کو ایک قسم کا لوگوں کے لیے ٹریڈ مارک بنا دیا جاتا ہے. آپ اسلاف کو دیکھ لیجئے, یہ دستور نہیں تھا. ٹھیک ہے آج مارکیٹنگ کی دنیا ہے, واچ آؤٹ کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے شاید کوئی 15 سے 18 سال پہلے کی بات ہوگی, تو کسی ایسے ہی شخص نے اس شخص پر دعویٰ کر دیا جن کا نام تھا, لیکن کسی اور نے بھی اسی نام کی کوئی چیز بنا لی. اس نے کہا کہ میری مرضی, میں نے جو بنایا میرے کام سے متعلق. اس نے کہا نہیں, تم نے میرا نام یوز کیا. تو اس نے سوال کیا, کیا جو آپ کا نام ہے دنیا میں صرف آپ ہی کا نام ہے, اور جو آپ کا لاسٹ نیم ہے وہ صرف آپ ہی کا لاسٹ نیم ہے؟ اس سے دل اتنا کھٹا ہوا کہ ان سے ہی دور ہو گئے. تو یہ نفسیاتی کمزوریاں ہوتی ہیں. मिसाल है कि अगर आपका नाम, कोई भी नाम ले लीजिए अपना नाम, जैसे फातिमा मोहम्मद, तो क्या दुनिया में सिर्फ एक ही फातिमा मोहम्मद है? और अगर अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दुनिया में मुमकिन है, नस्बतों से लोग बच्चों के नाम नहीं रख लेते। जैसे अगर एक बेटे का नाम इब्राहिम था, तो जब उसका अपना बच्चा हुआ तो उसका नाम इस्माइल रख लेते हैं। तो अब वो इस्माइल इब्राहिम बना, तो क्या वो एक ही है? तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अंदर से नुकसान देती हैं। और आप देखिए ना, दुश्मनी हो गई, तो मैं नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि जब मैं माहदुर रियाज के सानिया मुतवस्सता में था, यानी इदारे का नाम था रियाज, माहद कहते हैं गोद को, अल माहदुल इस्लामी, एक मदरसा, बहुत करीब से मैंने भी उसको देखा। तो इसका जो सानिया में, यानी मिडल लेवल पे या पढ़ रहे थे लिखने वाले, तो कहते हैं कि मैंने शेर कहना शुरू कर दिया। माहद के मजल्ले में मैंने एक कता लिखा, जिस पर बाज़ उसातिज़ा ने मेरी तारीफ की, तो मैं अपने आप को अबू तमाम और मुतनबी की माने समझने लगा। ये बहुत बड़े बड़े शायर थे अपने दौर के, यानी ये कहते हैं कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगा चंद उस्तादों के मुंह से अपनी तारीफ सुन के। और रसाले में नाम छप जाए आपका, माशाल्लाह, फिर तो देखिए लोग अखबार का वो टुकड़ा संभाल लेते हैं जिसमें आपके लिए कोई एक जुमला लिखा हो। एक बार माहद में दूसरे इदारे के तुलबा का वफद आया, इनके एजाज में एक जलसा किया गया जिसमें मुझसे कसीदा पढ़ने के लिए कहा गया, क्योंकि तुलबा में और कोई शायर या शायरी का दावा करने वाला न था। अब मुझे कसीदा कहना लाजिम था कि पानी ना मिले तो तयम्मुम ही सही, यानी जो मिल रहा है वही ले लीजिए। कसीदा तैयार करके पढ़ा गया, और माहद के अदब के एक उस्ताद ने कसीदे के असलूब और हुस्ने बयान की तारीफ की। मैं इसे सही समझा कि वाकई वो नादिरुल मिसाल और शाहकार है। जब मैं बड़ा हुआ, अदब का मजाक पैदा हो गया, शेर की मार्फत हो गई, मजाक से जौक है ये, वो मजाक नहीं है जो आप समझे हैं, यानी मुराद है कि अदबी जौक हो गया मेरा। क्योंकि अगर आप दूसरा मानी लेंगे तो बिल्कुल ही उलट चला जाएगा बात का मफहूम। खैर, कहते हैं कि जब मुझे खुद अदब और शेर से मार्फत हो गई, तो मुझे अपने आप पर और अपने कसीदे पर हंसी आई। आज भी आप देखिए, हाय मैं ऐसे बोलती थी, हाय मैं ऐसे लिखती थी, कभी पुरानी तस्वीरें देखे तो छुपाने को दिल करे, हाय मैं ऐसी लगती थी बेवकूफ सी, है ना? तो पुरानी चीजें पढ़कर आपको पता चलता है कि आप किन किन मरहलों से गुजरे हैं। और इंसान अपने आप को हमेशा परखता ही रहे, खूब से खूब तर की तलाश रखिए, अपनी इसलाह कीजिए, कई छलनियों में से खुद को गुजारिए। मेरी बात सुनते हुए लोग सो तो नहीं जाते? मेरी बात सुनकर लोगों को गुस्सा तो नहीं आ रहा होता मेरे ऊपर? मेरी महफिल में बैठे हुए लोग गिल्टी कॉन्शियस तो नहीं फील करते? एक एक एंगल से खुद को देखिए, लोग क्या देखें आपको, आप खुद अपने आप को देखिए। आप देखिए कि मैं और आप लोगों को इससे मोड़ नहीं सकते, तो इनके जज्बात को ठेस क्यों पहुंचाएं? ऐसा करके हम इनकी बदमजगी मोल लेंगे, इनकी दुश्मनी और नागवारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस चीज़ को छोड़कर लोगों की ज़िंदगी में जो खैर का पहलू है, जो अच्छे सिफात हैं, जो फजाइल हैं, इन पर नज़र रखें और इनकी कोताहियों और गलतियों से सरफे नज़र करें। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया, पता नहीं आपको कैसा लगा। लेकिन बहुत ही प्यारी बात, किसी को मुकाम से ना गिराइए, इवन छोटों लोगों को, बच्चों को, और इसी तरह कमज़ोरों को भी। तो आप देखिए कि एक ज़रा सा रिकैप करिए, पसंदीदा शख्सियात की खूबियाँ, सच्ची बातें लिख लें। आपको हर दिल अजीज बनने से कोई रोक नहीं सकता इल्ला माशाल्लाह। पहली बात है मुस्कुराते चेहरे से मिलिए, चलिए इस वक्त भी ज़रा स्माइल दें, थकन के मारे हुए हैं तो भी दीजिए, फिर साफ दिल हो जाए, पाकीज़ा ज़ुबान हो आपकी, खुश मिजाजी रखिए, हौसला अफजाई की आदत डालें, आजिज़ मिजाज बनिए और मुस्बत सोच रखिए, बी पॉजिटिव। ये छह चीज़ें लिख लें, फिर देखिए आप लोगों के दिलों में रहेंगे। और कुरान क्या कहता है, आयत 83 सूरत अल बकरा, वकूलु लिन्नासि हुस्ना। तो हमने क्या सीखा कि लोगों के साथ कलाम नरम हो, चेहरा मुस्कुराए, लेकिन दीन में मदाहनत नहीं करनी। मदाहनत किसको कहते हैं? सुस्ती बरतनी, दोहन कहते हैं चर्बी को, ऑयल बटरिंग है ये इसका मानी, सुस्त हो जाना। वद्दू लौ युद्खिनु फयुद्खिनुन, 29वें पारे में आता है, और ऐसा कलाम ना करे कि वो ये समझे कि इसके मजहब से राजी हैं। मतलब ये कि अच्छा अखलाक रखिए लेकिन गलत चीज़ों की तारीफें ना शुरू कर दे। और आप देखिए कि अल्लाह ने हज़रत मूसा और हारून को फिरौन के दरबार में जाने से पहले क्या कहा, उनसे नरम लहजे में बात कीजिए, सूरह तौहा 44 है। और देखिए कोई कायल हो ना हो, माइल हो जाए आपसे, ये लिख ले जुमला, हज़रत मूसा और हारून से अफसल नहीं हो सकता कोई आज के दौर में, और कोई फाजिर फिरौन से ज़्यादा गलत नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह उसके साथ भी नरमी की बात कह रहे हैं, हम तो अपनों के साथ दुरुस्तगी इख्तियार करते हैं। और अबू ज़र गफ़ारी से मरवी है ये बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी नेकी को हकीर ना जानो, बस अगर कुछ देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो अपने भाई को हसमुख होकर और खिले हुए चेहरे के साथ मिल लिया करो। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। फिर आप देखिए कि दूसरों की तारीफ के मुतल्लिक हमने काफ़ी बातें पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह दोहरा लीजिए, यानी तारीफ के मुतल्लिक क्या अहकाम हैं। बुखारी की रिवायत 6061 से पता चलता है कि मुबालगा नहीं करना चाहिए, इससे रोका गया। कुछ लोगों ने एक शख्स की तारीफ की मुबालगे की हद तक उसके मुंह पे ही, तो आपने फरमाया कि तुमने तो अपने साथी की गर्दन तोड़ दी, और ये जुमला कई बार कहा आपने, तो तारीफ कीजिए, थोड़ा सा कह दीजिए मेरा ये गुमान है, मैं ये सोचता हूँ। अब देखिए जब मरने वाले के साथ लफ्ज़ लगाते हैं ना मरहूम, उस पर भी कभी कभी एतराज़ होता है। ग्रामर की रोशनी में देखिए तो मरहूम वो जिस पे रहम कर दिया गया, हालांकि क्या आपको यकीन है किस पे हो गए? आप दुआ कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं, लेकिन फतवा नहीं दे सकते। और बाज़ तो सिर्फ लफ्ज़ मरहूम नहीं कहते, मरहूम व मगफूर व फलां और फलां सब के लाख के। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है। तो लिहाजा आप गुमान कीजिए कि दूसरा जन्नत में गया होगा। आप कहते हैं वो जन्नती किबला और काबा, ना कहिए। आप क्यों अपने ऊपर रिस्क लेते हैं इतना बड़ा? फिर आप देखिए कि बेनियाजी होनी चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है 6721, आपसे बात की गई कि आपका क्या ख्याल है कि एक शख्स अच्छे काम करता है और लोग फिर भी उसकी तारीफ करते हैं, तो आपने फरमाया तिल का बुशरा तुलाजिला, ये तो मोमिन के लिए फौरी बिशारत है, यानी आप ना चाहें फिर लोग करते हैं तो फिर करने दीजिए उनकी मर्जी।